नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। नेपाल सरकार ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटाया। दर्शन में 19 की मौत और 300 से अधिक घायल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम होलाम आज से 8 दिन की भारत यात्रा पर। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने संसद में विश्वास मत खोया, आज राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इस्तीफा सौंपेंगे। भारत ने CAFA नेशंस कप फुटबॉल में ओमान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर कांस्य पदक जीता। और 17वां एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू, अबुधाबी में पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और हांगकांग होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नेपाल सरकार ने युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 300 से अधिक घायल हुए। नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने बताया कि मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद सरकार ने सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध का फैसला वापस ले लिया है। 3 दिन पहले नेपाल सरकार ने फेसबुक और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था क्योंकि ये नेपाल सरकार के साथ पंजीकृत नहीं थे। इस बीच नेपाल में फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिर से सक्रिय हो गए हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हिंसक विरोध प्रदर्शन की जांच के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी और घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस बीच नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक ने नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलम में निर्दोष नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की अपनी नीति पर अड़िग है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम होलाम और उनकी पत्नी वीणा राम गुलाम आज से 16 सितंबर तक 8 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। एक रिपोर्ट।
वर्तमान कार्यकाल में ये भारत में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। डॉक्टर राम गुलाम इससे पहले मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने भारत आए थे। अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राम गुलाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर राम गुलाम मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। मुंबई में वे एक व्यापारिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि व्यापार पैटर्न और बाजार पहुंच वैश्विक आर्थिक चर्चा में प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने सतत व्यापार को बढ़ावा देने के सहयोगी और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया।
The focus is on stabilizing the international economy and the world order. But it is equally essential that we turn our attention to ongoing conflicts, not least because they have direct developmental and supply chain implications. Furthermore, as we head towards the next UN General Assembly session, an exchange of views on reforming multilateralism would be appropriate.
फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू संसद में विश्वास मत हार गए हैं। अब उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। फ्रांसवा बायरू फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा एक वर्ष में नियुक्त तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पद छोड़ना होगा। राष्ट्रपति मैक्रों अपनी सरकार को स्थिर रखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बायरू आज अपना इस्तीफा फ्रांस के राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि श्री मैक्रों अगले कुछ दिन में नए प्रधानमंत्री की घोषणा करेंगे। बायरू की अल्पकालिक अल्पमत सरकार के पतन से फ्रांस में अनिश्चितता और लंबे समय तक विधायी गतिरोध का खतरा बढ़ गया है। फ्रांस बजट संबंधी कठिनाइयों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन और गाजा में युद्ध तथा अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बदलती प्राथमिकताओं सहित कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर कल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, शिक्षा, कृषि, पारंपरिक चिकित्सा, जलवायु परिवर्तन, खेल और लोगों के बीच संबंधों सहित सभी द्विपक्षीय पहलुओं की समीक्षा की। परामर्श का अगला दौर वेलिंगटन में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित किया जाएगा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
जी निखिल, खेल खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। CAFA नेशंस कप फुटबॉल में भारत ने तजाकिस्तान के हिलोर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए मैच में ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता। उदंत सिंह के भारत के लिए बराबरी का गोल दागने के बाद निर्धारित समय तक मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। ओमान ने पेनल्टी शूटआउट में अपने पहले दो मौके गंवाए और गुरप्रीत सिंह संधू ने अंतिम पेनल्टी बचाकर भारत को 3-2 से जीत दिलाई। ये पहली बार है जब भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में ओमान को हराया। और निखिल, अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। 17वां एशिया कप टूर्नामेंट आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहा है। पहले मैच में आज ग्रुप बी में अफगानिस्तान और हांगकांग आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत का पहला मैच कल ग्रुप ए में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है तथा ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग है। भारत का ग्रुप स्तर का आखिरी मुकाबला 19 सितंबर को ओमान से होगा। टूर्नामेंट का सुपर फोर चरण 20 सितंबर से शुरू होगा। दोनों ग्रुप की शीर्ष टीमें 28 सितंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए 3-3 मैच खेलेंगे। इसके अलावा हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करेंगी। सिंधु पहले मैच में डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोन फर्सन से भिड़ेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय और आयुष शेट्टी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत हांगकांग ओपन की शुरुआत क्वालिफिकेशन राउंड से करेंगे। उनका सामना भारत के ही थारुण मन्नेपल्ली से होगा। दूसरी ओर पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। भारत के हरिहरन, अमसा करुणन और रुबन कुमार रेथिना सभापति भी BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स में भाग लेंगे। ध्रुव कपिला, तनिषा क्रेस्टो और रोहन कपूर रुथविका गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भाग लेंगे। जे निखिल, खेलों की दुनिया से बस आज इतना ही।
धन्यवाद मुकेश। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कहा है कि पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रांत के लोगों का एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया है। मीर यार बलूच के अनुसार विरोध की लहर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के विरोध में भड़की है। इस आतंकवादी संगठन ने 2 सितंबर को क्वेटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP की रैली पर आत्मघाती हमला करवाया था, जिसमें 15 बलूच लोग मारे गए और 35 अन्य घायल हुए। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कें और दुकानें बंद कर दी गईं, कई राजमार्ग अवरुद्ध कर दिए गए हैं, रेल सेवाएं रोक दी गई हैं और हवाई अड्डों के बंद होने की खबरें भी सामने आई हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा जारी उत्पीड़न की निंदा करते हुए मानवाधिकार संस्था बलूच वॉइस फॉर जस्टिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग को मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया है। भारत और इसराइल ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन तथा इसराइल की वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना और इसराइली निर्यातकों के लिए वित्तीय प्रोटोकॉल को तलाशना है। यूरोपीय संघ की राजनीतिक शरण एजेंसी के अनुसार 2025 की पहली छमाही में यूरोपीय संघ में राजनीतिक शरण के आवेदन में 23% की गिरावट आई है। यूरोपीय संघ एजेंसी ने राजनीतिक शरण के लिए जनवरी से जून महीने तक 3,99,000 नए आवेदन आने की सूचना दी है। इन आवेदनों की संख्या या 2024 की इसी अवधि की तुलना में 1,14,000 कम है। राजनीतिक शरण के आवेदनों के लिए पहले से शीर्ष गंतव्य देश रहे जर्मनी में सबसे अधिक 43%, इटली में 25% और स्पेन में 13% की गिरावट आई है। कुछ लोगों द्वारा संरक्षण की मांग करने के बाद ये गिरावट देखी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल सरकार ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटाया। प्रदर्शन में 19 की मौत और 300 से अधिक घायल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम आज 8 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने संसद में विश्वास मत खोया। आज राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इस्तीफा सौंपेंगे। भारत ने CAFA नेशंस कप फुटबॉल में ओमान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर कांस्य पदक जीता। और 17वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू। अबुधाबी में पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और हांगकांग होंगे आमने सामने। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।